وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. اور اس قیامت کے دن ہم جہنم کو کافروں کے بالکل سامنے لے آئیں گے, یعنی جہنم کے اندر کافروں کو داخل کرنا بہت آسان ہو جائے گا. قیامت کے میدان سے بھی کافروں کو جہنم نظر آتی ہوگی, جس کی وجہ سے ڈرے ہوئے گھبرائے ہوئے رہیں گے. جہنم میں سے ایک لمبی گردن نکلے گی جو پورے قیامت کے میدان میں سے گنہگاروں کو اچک لے گی. الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری وکانوا لا یستطیعون سمعا. وہ کافر جن کی آنکھوں پر میری نصیحت کے بارے میں غفلت کا پردہ پڑا ہوا تھا اور وہ ہمارے کلام کو سن بھی نہیں سکتے تھے, یعنی ایسی غفلت میں پڑے ہوئے تھے کہ نبی کی نصیحت نہیں سنتے تھے, قرآن کی نصیحت نہیں سنتے تھے اور ایمان بھی نہیں لاتے تھے. افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا. کیا پھر بھی یہ کافر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا مدد کرنے والا بنائے؟ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی کو بھی مدد کرنے والا مانا تو اس کی وجہ سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یقین رکھو, ہم نے ایسے کافروں کی مہمانی کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے, یعنی جہنم کے اندر ان کو رکھا جائے گا. یہ تنبیہ کے طور پر آیت کے اندر فرمایا جا رہا ہے. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا. تم ان سے پوچھو, کیا ہم تم کو بتلائیں ایسے لوگ جو اعمال کے اعتبار سے بڑے نقصان میں ہیں؟ اگر کسی کافر کو, کسی نافرمان کو اپنے دنیا کے اعتبار سے اچھے اعمال پر گھمنڈ ہو تو ہم بتلاوے تم کو؟ بعض لوگوں کو خیرات, صدقات, چیریٹی, سیوا, ریلیف کے کام کی وجہ سے بڑی فخر ہوتا ہے, خاص طور پر ان کے بارے میں ہیں. الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا. یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری کوششیں, ساری محنتیں, دوڑ دھوپ دنیا کی زندگی میں بھٹکتی رہی, یعنی ساری محنت صرف دنیا 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 دنیا, اور وہ ساری محنت ان کی بیکار ہو گئی, گئی گزری ہو گئی. اور ان کی حالت یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے رہے ہیں کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. ایک تو دنیا دنیا میں پڑے رہے اور اس کو پھر اوپر سے اچھا کام سمجھتے رہے. اچھا کام وہ ہیں جو انسان مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے کرے. اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا. انہی لوگوں نے अपने रब की आयतों का और उससे मिलने का इनकार किया, इसीलिए उनके किए हुए काम बर्बाद हो गए और हम कयामत के दिन उनके लिए कोई तराजू कायम नहीं करेंगे। यानी इन लोगों का हिसाब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अल्लाह ताला उन लोगों को सीधा जहन्नम के अंदर दाखिल कर देंगे। देखो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनको अल्लाह ताला बगैर हिसाब के जन्नत देंगे, इसी तरह बहुत सारे लोगों को बगैर हिसाब के जहन्नम में डालेंगे, इसलिए कि उन्होंने पूरी जिंदगी कुफ्र किया, शिर्क किया, इसलिए उनके पास जो कोई अमल है वो भी बेकार हो गया, बेवजन हो गया, और अल्लाह ताला इनको सीधे जहन्नम की आग के अंदर डालेंगे। ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا, उनके कुफ्र की वजह से ये जहन्नम उनकी सजा है। ये सजा इसलिए भी है कि उन्होंने मेरी आयतों और मेरे रसूलों का मजाक उड़ाया था। إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا, یقینی بات یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے ہرے ہرے باغیچے ان کی مہمانی کے لیے تیار ہے, ٹھنڈے سائے والے باغیچے جنت الفردوس کے باغیچوں میں وہ لوگ آرام کریں گے۔ خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا, ان باغوں میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور وہاں سے جگہ بدل کر کسی اور جگہ جانا وہ نہیں چاہیں گے۔ دنیا میں تو آدمی کو ایک جگہ کے اوپر دل لگتا نہیں ہے, यहां से वहां, वहां से यहां, वहां से यहां, वहां से यहां, यहां से वहां, भागम भाग दौड़म दौड़ करता रहता है, लेकिन जन्नत में इतना मजा आएगा कि जगह बदलने का नाम भी नहीं लेगा। قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا, اے نبی تم لوگوں سے ایسا کہہ دو اگر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے سمندر روشنائی بن جائے, انک بن جائے, تو میرے رب کی باتیں ختم ہونے سے پہلے سمندر ختم ہو جائے گا, اگرچہ اس سمندر کی مدد کے لیے ایسا ہی سمندر کا پانی ہم لے آئے۔ یعنی اللہ کی تعریف کی باتیں, صفات کی باتیں کوئی لکھ نہیں سکتا۔ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا ولا يشرك بعبادة ربه احدا, اے نبی تم لوگوں کو یہ بھی کہہ دو, بہت دھیان سے سنو, اللہ قرآن مجید میں خود حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اعلان کرا رہے ہیں کہ میں تو تمہارے جیسا بشر ہوں, جیسے تم مانس ہو, انسان ہو, انسان ہونے میں, مانس ہونے میں, بشر ہونے میں میں اور تم ایک جیسے ہیں۔ ہاں یہ بات ہے کہ میری طرف وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے, سو جو شخص اپنے رب سے ملنے کی آرزو رکھتا ہو تو اس کو چاہیے کہ نیک عمل کرے اور اپنے مالک اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے, اسی لیے آپ کو کھانے کی ضرورت پڑتی تھی, پانی کی ضرورت پڑتی تھی, आराम की जरूरत पड़ती थी, इस्तिंजे की जरूरत पड़ती थी, शादी भी आपने की, गुसल भी किया, वुजू भी फरमाया, भूख भी लगी, प्यास भी लगी, किसी ने जादू किया तो जादू भी हो गया, बीमारी भी हुए हुजूर। तो ये एक इंसान को, मानव जात को, मानस को, बशर को जितनी चीजें होती है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसमें से बहुत सारी चीजें पेश आई। तो जात के एतबार से हुजूर बशर थे और अखलाक, आमाल, ईमान, नेकियों के एतबार से आप सरापा नूर थे। तो अखलाक नूरानी, आपकी जिंदगी नूरानी, आप जो दीन लाए वो नूरानी, आप जो शरीयत लाए वो नूरानी, आपने लोगों को जो तरीका बतलाया वो नूरानी, आपकी सुन्नतें नूरानी, लेकिन जात के एतबार से आप बशर और इंसान है। ये हैं इस मुबारक सूरत की अखीर वाला रुकू और आयतें। इसमें पहली बात ये बतलाई गई कि अल्लाह ताला के बंदे जैसे फरिश्ते, अल्लाह के बंदे जैसे के नबी, इनमें से किसी को भी अल्लाह के साथ इबादत में शरीक और पार्टनर मत बनाओ। पहले जमाने में लोग फरिश्तों की इबादत करते थे, नबियों की इबादत करते थे, जैसे आज भी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के नबी है उनकी लोग इबादत करते हैं, हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के नबी है उनकी लोग इबादत करते हैं। तो अल्लाह ने मना किया कि फरिश्ते और नबी तो मेरे बंदे हैं, उनकी इबादत मत करो। इसी तरीके से जिन्नात और शैतान, ये भी अल्लाह ने पैदा किया, इसीलिए पैदा करने के एतबार से ये भी अल्लाह के बंदे हैं, लिहाजा जिन्नात और शैतान की भी तुम लोग इबादत मत करो कि शैतान जैसा कहे ऐसा करने का, शैतान की बात मानने की ऐसा न मत करो। इसी तरीके से बुत, मूर्ति, आग, सितारे, इनकी भी इबादत मत करो। इबादत करो एक अल्लाह सुबहानहू व ताला की, आग को पैदा करने वाले अल्लाह, इसी तरीके से पत्थर को पैदा करने वाले अल्लाह, दरख्त को पैदा करने वाले अल्लाह, सितारों को पैदा करने वाले अल्लाह, अल्लाह ही मदद करते हैं, अल्लाह ही जरूरियात को पूरी करते हैं, अल्लाह के सिवा कोई जरूरत पूरी करने वाला नहीं है। देखो, इंसान को आखिरत का जो नुकसान होवे वो सबसे बड़ा नुकसान है। दुनिया का नुकसान तो आज है और कल ठीक हो जाएगा, आखिरत का नुकसान सबसे बड़ा नुकसान है। और आखिरत में नुकसान कैसे होगा? नंबर एक, अकीदा खराब होवे, और नंबर दो, दिखलावे के लिए कोई काम करे। इसीलिए अकीदे भी अच्छे रखो और हर अमल को अल्लाह के लिए करो, तो इंशाअल्लाह वो अमल अल्लाह के यहां कबूल हो जाएगा। तो कोई भी काम करो अल्लाह को राजी करने के लिए करो, मखलूक को खुश करने के लिए मत करो। और बाज लोग ऐसे होंगे कि कयामत के दिन इनके लिए अल्लाह ताला हिसाब नहीं करेंगे, तराजू नहीं रखेंगे, सीधा उनको जहन्नम में भेज देंगे। हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कयामत के दिन एक आदमी आएगा ऊंचा, कदावर, मोटा, ताजा, अल्लाह के नजदीक एक मच्छर के पर के बराबर भी उसका वजन नहीं होगा, मच्छर की पांख के बराबर भी उसका वजन नहीं होगा। और ये हैं फलानुकीमु लहुम यौमल कियामती वजना। एक हदीस में ये भी आया है, हजरत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह ताला नो फरमाते हैं, कयामत के दिन ऐसे ऐसे आमाल दरबार में आएंगे कि जो साइज के एतबार से तिहामा के पहाड़ों के बराबर होंगे। तिहामा अरब का एक स्टेट है, वहाँ के पहाड़ बड़े ऊंचे होते हैं। तो कहा बहुत से नेक आमाल ऐसे होंगे जो तिहामा के पहाड़ों की तरह ऊंचे ऊंचे होंगे, लेकिन जब अल्लाह के यहाँ इंसाफ की तराजू होगी तो उसमें कोई वजन नहीं होगा, खोखले होंगे खोखले। जैसे कि थर्मोकोल का कोई बंगला बना डाले तो वो एकदम खोखले होते हैं, कोई वजन नहीं होता है। इस तरीके से जिस अमल में इखलास न हो, जिस अमल में सुन्नत तरीका न हो, वो अमल दिखने में कितना भी बड़ा हो लेकिन अंदर से वो खोखला और पोलम पोल होता है। और हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला से जब जन्नत मांगने बैठो तो जन्नतुल फिरदौस मांगो, इसलिए कि वो जन्नत का सबसे ऊंचा और बेहतरीन दर्जा है और उसके ऊपर अल्लाह ताला का अर्श है, अर्श रहमान है। और जन्नत की नेमत हमेशा बाकी रहने वाली है। दुनिया में तो इंसान आलीशान बंगले में रहे, शानदार महल में रहे, शानदार कोठियों के अंदर रहे, शानदार फार्म हाउस के अंदर रहे, 7 स्टार होटल के अंदर रहे, कितनी भी अच्छी जगह के ऊपर रहे, लेकिन उसका दिल उकता जाएगा, दिल भर जाएगा और वो दिल चाहेगा कि अब मैं बाहर निकलूं, घूमूं फिरूं। लेकिन जन्नत एक ऐसी जगह है जहां से किसी को निकलने का दिल चाहेगा नहीं, हर एक आदमी का दिल वहीं पर ऐसा लगेगा कि वहां से कोई भी आदमी निकलने का बिल्कुल इरादा करेगा नहीं। देखो, हर अमल अल्लाह को खुश करने के लिए करो, लेकिन फिर साथ साथ के अंदर हमारा कोई अमल मशहूर हो जाए, हम तो चाहते नहीं थे लेकिन मशहूर हो गया, तो उससे इखलास में कोई कमी नहीं आएगी। अल्लाह के यहां वो जो है मकबूल अमल हो जाएगा। तो हम जब कोई अमल करे तो अल्लाह ताला को राजी करने की नीयत करे, मखलूक की नीयत ना करे, किसी इंसान की नीयत ना करे, दुनिया के मर्तबे की नीयत ना करे, लेकिन कुदरती तौर पर अगर लोगों में शोहरत हो जाए, मशहूर हो जाए तो कोई हर्ज नहीं, कोई गुनाह की बात नहीं है। और बाज़ मर्तबा आदमी कोई नेक अमल छुप के करता है लेकिन अचानक कोई आकर के देख लेवे तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है। जैसे कि आप छुप के नमाज पढ़ रहे थे लेकिन अचानक कोई आ गया और आपको देख लिया, तो बल उसमें कोई बुराई नहीं, बल्कि उस पर डबल सवाब मिलेगा। एक तो जो अमल आपने छुप के किया वो अमल का आधा हिस्सा, और दूसरा किसी ने आके देखा उसके बाद जो अमल किया वो हिस्सा। बल्कि हदीस शरीफ से तो ये पता चलता है कि ये बड़ी खुशखबरी की बात है कि दुनिया के अंदर इंसान न चाहे फिर भी अल्लाह उसके अमल को लोगों में मशहूर कर देवे, ये बहुत बड़ी खुशखबरी है अल्लाह ताला की तरफ से। इसीलिए इंसान को महज अल्लाह को राजी करने के लिए काम करना चाहिए। और याद रखो, दुनिया में किसी का इल्म, नॉलेज, एजुकेशन, शिक्षण, जानकारी कितनी भी ज्यादा हो जावे लेकिन अल्लाह के मुकाबले के अंदर समंदर के एक कतरे के बराबर भी नहीं है। अल्लाह के इल्म के सामने दुनिया में किसी का इल्म, बल्कि तमाम इंसानों और जिन्नातों का इल्म, नॉलेज जमा कर लेवे तो समंदर के कतरे के बराबर भी नहीं हो सकता। और हमेशा नेक अमल करो, अल्लाह को राजी करने के लिए सुन्नत तरीके से अमल करो। कोई कहे ना भाई नेक काम किसको कहते हैं, नेक अमल किसको कहते हैं, तो ये बात शॉर्ट एंड स्वीट याद रखो कि नेक अमल कौन सा, जो अल्लाह को राजी रखने के लिए करे और सुन्नत तरीके से करे, उसका नाम है नेक अमल। अल्लाह हमको ये नेक आमाल करने की तौफीक अता फरमावे। देखो एक बात काम की मैं आपको बतला दूं, ये जो अखीरी दो आयतें हैं قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا। इस आयत की एक फजीलत सुनो, रात को सोते वक्त पर ही आयत पढ़ लो और जिस वक्त के ऊपर उठने की नियत करोगे अल्लाह ताला उस वक्त पर कुदरती तौर पर आंख को खोल देंगे। कितनी बड़ी फजीलत। आज लोग कहते हैं कि अलार्म घड़ियाल से भी मेरी आंख तो खुलती नहीं है, ऐसी मेरी नींद है असाबे काब जैसी। तो उनको कहने का कि भाई जो है ना ये आयत पढ़ के सो जाओ और जितने बजे की नियत करोगे इतने बजे इंशाल्लाह आंख खुल जाएगी। एक दूसरा फायदा बतलाऊं, हदीस में आता है कि रोजाना रात को एक घड़ी एक मिनट ऐसी होती है कि उसमें बंदा जो दुआ करता है वो दुआ कबूल हो जाती है। अब वो घड़ी कौन सी? तो कहा रात को सोते वक्त पर सूरह काहफ की आखिरी ये दो घड़ी पढ़ के सो जाओ तो अल्लाह ताला उसी घड़ी में उसकी आंख खोल देंगे जिस मिनट में दुआ कबूल होती है। तो रात को ये आयत पढ़ के अल्लाह का नाम लेके सो जाने का, ये आयत पढ़ने के बाद कोई दूसरा काम नहीं करने का, दूसरी बात नहीं करने की और चुपचाप सो जाने का, तो इंशाल्लाह जिस वक्त भी आंख खोले समझो कि वो दुआ की कबूलियत की घड़ी है और उस वक्त पर दुआ मांग लेने की तो इंशाल्लाह दुआ कबूल हो जाएगी। और हर इंसान को अपनी जिंदगी के अंदर कुछ नेक आमाल ऐसे करने चाहिए कि अल्लाह जानते हैं और बंदा जानता है, तीसरा कोई नहीं जानता, ऐसे नेक आमाल करने चाहिए। मैं आप सबको दावत देता हूं कि सोचो अपनी जिंदगी को कि क्या आज तक हम अपनी जिंदगी के अंदर ऐसे आमाल किए हमने कि अल्लाह और हमारे सिवा कोई नहीं जानता। देखो आदमी खुल्लम खुल्ला कोई नेक अमल करे इखलास के साथ तो इसमें कोई बुराई नहीं है, बल्कि बाज अमल तो खुल्लम खुल्ले ही करने पड़ते हैं। जैसे नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में खुल्लम खुल्ला जमात के साथ नमाज पढ़ना, ईदगाह में खुल्लम खुल्ला जाना, तो इखलास के साथ खुल्लम खुल्ला ये आमाल करने ही पड़ते हैं। लेकिन बहुत सारे आमाल ऐसे होते हैं कि जो आदमी अकेले में तन्हाई में एकांत के अंदर कर सकता है, तो अपनी जिंदगी में कुछ न कुछ नेक आमाल ऐसे करो जो अल्लाह और बंदा ही जाने, तीसरा कोई भी नहीं जाने, बीवी भी नहीं जाने, बच्चे भी नहीं जाने, दोस्त भी नहीं जाने, पीर भी नहीं जाने, कोई नहीं जाने, बस मैं जानता हूं मेरे अल्लाह जानते हैं। ऐसे कुछ आमाल का स्टॉक करना चाहिए, अल्लाह ऐसे आमाल से इंशाल्लाह बहुत ज्यादा खुश होंगे।